Here all, we already got his introduction, so we request Prabhuji to start the Bhagavatam class.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi jana vallabha girivara dhari.
Gopi jana vallabha girivara dhari.
Gopi jana vallabha girivara dhari.
Gopi jana
Yashodanandana Vraja Janaranjana.
Yashodanandana
Vraja Janaranjana.
Yashodanandana
Vraja Janaranjana. Yamuna Tiravana Chari. Yamuna
Tiravanachari.
Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Madhava Kunja Bihari. Gopi jana vallabha girivara dhari.
Gopi jana vallabha.
Gopi jana vallabha girivara dhari.
Gopi jana vallabha girivara
dhari. Yashoda nandana vraja jana ranjana.
Yashoda nandana vraja jana
Yamuna Tiravana
Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya, Astotra Shata Shri Srimad is Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki, ISKCON BBT Founder Acharya, Srila Prabhupada ki,
Jai
Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya, Astotra Shata Shri Srimad, Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj ki, Ramacharya Haridas Thakur ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Prem Sikho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki, Sisi Radha Krishna Gopa Gopika, Shama Kunda Radha Kundagiri Govardhan ki, Vrindavan Mathura Dham ki, Navadeep Mayapur Dham ki, Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki, Bhakti Devi Tulasi Devi ki, Gangama Yamuna Mayi ki, Sisi Radha Madhav ki, Sisi Panch Tattva ki, Samaved Gaura Bhakta Vrinda ki, Nidai Gaur Premanande. All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovisram Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamcha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vaisya Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna.
तो आज बहुत ही पवित्र दिन है. एक तो एकादशी उत्सव है और दूसरा है हमारे गौड़िया संप्रदाय के जो महान आचार्य गण हैं, उनका आविर्भाव और तिरोभाव तिथि है शायद रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज. आज अनाउंसमेंट किया होगा आपने. अच्छा, ओके. तो जब श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में वर्णन आता है परीक्षित महाराज के बारे में, तो परीक्षित महाराज जब अपना सारा ग्रह आदि त्याग करते हैं और शुकदेव गोस्वामी से मिलते हैं, तो शुकदेव गोस्वामी से जब परीक्षित महाराज सर्वप्रथम मिले, तो भगवान के भक्तों के जीवन में कृष्ण का हाथ देखा जाता है. तो परीक्षित महाराज बहुत अधिक सिंसियर थे और परीक्षित महाराज कृष्ण की ओर जाने के लिए अत्यधिक ईगर थे. बहुत अधिक उनके अंदर लवल्य था, लालस था कृष्ण की ओर जाने के लिए. इसलिए परीक्षित महाराज के लिए कृष्ण शुकदेव गोस्वामी जैसे महान आचार्य को भेजते हैं. शुकदेव गोस्वामी कहां कहां भ्रमण कर रहे थे, लेकिन जब राइट टाइम आया परीक्षित महाराज के जीवन में, तो कृष्ण ने किसको अरेंज किया उनके लिए? शुकदेव गोस्वामी. तो इस प्रकार से भगवान की ओर हम जाने के लिए तीव्र डिजायर जागृत करते अपने हृदय में, तो आगे की सारी जो टेक केयर है वो कृष्ण अपने हाथ में लेते हैं। और जब शुकदेव गोस्वामी निर्वस्त्र होकर भ्रमण कर रहे थे अलग अलग गांवों से जंगलों से होते हुए, लेकिन उसी दिन उसी क्षण जब इनको नीड थी, किसको नीड थी अपने लाइफ में, परीक्षित महाराज को, तो उनकी नीड को पूर्ण करने के लिए शुकदेव गोस्वामी का आगमन होता है। और परीक्षित महाराज अपने जीवन में एक ऐसे डिवोटी को चाहते थे जिनके द्वारा जो कृष्ण का जो स्मरण है या कृष्ण भावना है उसकी वो पूर्णता या परफेक्शन अचीव करना चाह रहे थे। तो जब शुकदेव गोस्वामी आए, शुकदेव गोस्वामी अपने शरीर आदि से अत्यधिक परे थे, रास्ते में कोई उनके ऊपर पत्थर फेंकता था, कोई थूकता था, फिर भी शुकदेव गोस्वामी कृष्ण के या कृष्ण भावना में इतने मग्न थे, तो वहां गंगा के किनारे आते हैं और परीक्षित महाराज जैसे ही शुकदेव गोस्वामी को देखते हैं वैसे पहचान लेते हैं कि ये वास्तव में राइट पर्सन है, राइट व्यक्ति है जिसकी मुझे शरण या शेल्टर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमारे अंदर जो साधक हैं, भक्तिमय जीवन में हमें ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में तीन चीजें, कि एक है कि एक साधक को अपना साध्य आवश्यक है कि वो जाने, साध्य मीन्स गोल, कि मेरा गोल क्या है, क्यों मैं ये भगवत भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्या अचीव करना चाहता हूं अपने इस प्रैक्टिस में, और उस गोल को अचीव करने के लिए उसके जीवन में कौन चाहिए, साधु चाहिए, थ्री यस ना, साधक के लिए साध्य जानना आवश्यक है गोल, और साध्य को अचीव करना है, गोल को अचीव करना है तो उसके लाइफ में एक साधु की आवश्यकता है, एक डिवोटी की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज तो पहले से ही महान भक्त थे, पहले से ही शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो शुकदेव गोस्वामी की जो उन्नत अवस्था है उसको पहचान पाए। तो शुद्ध भक्त की पहचान केवल एक शुद्ध भक्त कर सकता है। हमारे जैसे जो बद्ध जीव है षड रिपोन से जो बंधे हुए हैं वो शुद्ध भक्त को पहचान नहीं सकते। और जब शुकदेव गोस्वामी के चरणों की उन्होंने शरण ग्रहण की और उनका गुणगान करना शुरू किया, उन्होंने कहा हे शुकदेव गोस्वामी, आप किसी के घर में जाते हो तो उतनी देर तक रहते हो जितनी देर गाय का दूध निकालने के लिए लगता है, और ऐसे नहीं कि आप उनके घर दूध पीने के लिए जाते हो कि चलो अभी वो गाय का दूध निकाल रहे होंगे तो मैं जाके कुछ प्राप्त करता हूं, नहीं। वो कहते हैं कि हमारे जैसे जो जीव अत्यधिक अपने भौतिक कार्यों में बहुत अधिक मग्न है और अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर भगवान की शरण ग्रहण करना नहीं चाहते, लेकिन आपके जैसे महान आचार्य या वैष्णव या डिवोटीज भ्रमण करते हैं अपने हित के लिए नहीं, बल्कि किसके हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, और इसलिए वो कहते हैं एशाम संस्मरण पुंसाम, कहते हैं कि जिनका केवल ऐसे महान भक्तों का केवल स्मरण करने मात्र से व्यक्ति कि ये जो भौतिक जगत की जो गांठ है, ग्रंथि है, श्रृंखला है, वो मुक्त हो सकती है केवल क्या करने से, स्मरण करने से। इसलिए कृष्णदास कविराज जिनका आज आविर्भाव या तिरुभाव, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं भूल गया, तिरुभाव है, तो कृष्णदास कविराज जब चैतन्य चरितामृत अपना ग्रंथ लिखते हैं तो उसकी शुरुआत इसी करते हैं, गुरु भगवान वैष्णव तीनेरा स्मरण, तीनेरा स्मरण है विघ्न विनाशन। हम अपने जीवन में इवन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो कई सारे बाधाओं को ना अनुभव करते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो कहते हैं कृष्णदास कविराज कि एक ही उपाय है, यदि अपने आध्यात्मिक जीवन की सारी बाधाओं को फेंक देना है, जैसे प्रभुपाद कहा करते अपने डिसाइपल्स को कि आपको जो भी बाधाएं हैं वो मुझे बताओ, मैं अपने लात मार के एक किक में क्या करूंगा, उनको दूर कर दूंगा। तो ये पावर किसके पास है, एक महान भक्त के पास है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन निर्भर है, 100% हमारा डिपेंड है एक भक्त के आश्रय में। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नाही तेजे। तो भगवत भक्ति करनी होती है भक्तों का शेल्टर लेकर। जब कोई व्यक्ति आश्रय लेकर शेल्टर लेकर कृष्ण का भजन करता है तो कृष्ण के पास सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को ना करें। कृष्ण उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं क्विकली, तुरंत ही अपना बना लेते हैं। तो इसी कारण से शास्त्र या न कृष्णदास कविराज कहते हैं, गुरु भगवान वैष्णव तीनेर स्मरण, हम क्या हो जाते हैं, एक बस कृष्ण मीन्स कृष्ण। तो प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे रविंद्र स्वरूप प्रभु, वो जब शुरुआत के दिनों में वो एक बार रोते हुए गए और कहा कि मेरे भी और बीच में आप नहीं चाहिए प्रभुपाद को कहा। तो इस प्रकार से हम बद्ध जीव क्या चाहते हैं, सीधा कृष्ण और मेरे बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं अर्जुन को आदि पुराण में कि जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूं वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है, जिसने एक शुद्ध भक्त का आश्रय लिया है, गुरु का आश्रय लिया है, वो वास्तव में कृष्ण कहते वो मेरा भक्त है। यही शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाहम वर्णी न च ग्रहपतिर न वनस्तो यतिर्वा। वो कहते कि मैं किसी वर्ण और आश्रम से बिलोंग नहीं करता हूं। तो कोई पूछे कि हे चैतन्य महाप्रभु आपका आइडेंटिटी क्या है, तो महाप्रभु क्या कहते हैं, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि मैं गोपियों के जो भरता है पालक है उनके दासों के दासों का दास हूं। तो कुलशेखर जो 12 अलवरों में से हैं दक्षिण भारत में, भगवान के जो अलग अलग आश्रय हैं, उन्होंने अलग अलग अलवरों के रूप में साउथ इंडिया में जन्म लिया कलियुगा के शुरुआत के 100-150 सालों में। उसमें से कुलशेखर अलवर थे। प्रभुपाद कुलशेखर अलवर की प्रार्थनाओं को बहुत गाते थे और उन्हें बुक भी शुरू किया था प्रभुपाद ने, मुकुंद माला स्तोत्र शुरुआत के कुछ श्लोकों का उन्होंने अनुवाद किया। तो वो जब कुलशेखर कहते हैं कि वो महाप्रभु से भी आगे की बात करते हैं, महाप्रभु ने तो थोड़ा कहा दास दासानु दास, लेकिन वो जो वर्णन करते हैं तो उसमें 8 या 10 बार क्या करते हैं, कहते हैं तव भृत्य भृत्य, वो कहते हैं आपके भृत्य का या दास का दास, ऐसे 8 या 9 बार वो उस शब्द का यूज करते हैं। जब एक बार श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा सेरेमनी किया और किसी का नाम रख दिया होगा, जैसे कई बार दीक्षा के समय में हमें अपना नाम ज्यादा अच्छा नहीं लगता, हमें ज्यादा चिंता होती है क्या नाम मिलने वाला है ना, ये चिंता नहीं है कि मुझे गुरु के चरणों का आश्रय मिला है, बस हमें ज्यादा चिंता क्या है, अपना नाम। जितना नाम कृष्ण का अच्छा नहीं लगता हमें, उससे अधिक नाम किसका अच्छा लगता है, स्वयं का नाम। यही तो, क्योंकि कलयुग में क्या है, नाम ये वही केवलम, या कृष्ण का या अपना, दोनों में से एक चॉइस हमारी है। तो इवन दिल्ली में भी श्रील गोपाल कृष्ण महाराज ने एक बार दीक्षा दी तो एक भक्त का नाम रखा अयोध्या वासी दास। अभी वो कहता है मैं गौड़िया संप्रदाय में हूँ, हमारे संप्रदाय का लक्ष्य क्या है, राधा कृष्ण प्राण मोर, राधा कृष्ण वृंदावन की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। महाराज ने तो मेरा नाम अयोध्या के लिए रखा है मैं तो वृंदावन गोलोक वृंदावन जाना चाहता हूँ, लेकिन वो कहा कौन सा नाम दिया है, अयोध्या वासी। तो वो दीक्षा के बाद जाता है, कहते मुझे ये नाम ठीक नहीं लग रहा तो महाराज कहते ठीक है आज से तुम्हारा नाम वृंदावन वासी तो प्रभुपाद के पास भी ऐसे डिवोटीज गए, एक डिवोटी गया जिसका नाम कृष्ण से संबंध नहीं था, डायरेक्ट कृष्ण के मुख्य नाम है और कुछ गौण नाम है, प्राइमरी नेम्स एंड सेकेंडरी नेम्स। तो मुख्य नाम में तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं ब्रज लीला आदि, उससे संबंधित नाम होते हैं। तो इस भक्त का नाम रखा होगा भगवान के मटेरियल जो ये वर्ल्ड है उससे संबंधित, परमात्मा दास या फिर क्या हो सकता है और नाम, कुछ भी ऐसे नाम जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो हाँ संबंध है लेकिन भौतिक प्रकृति से मटेरियल नेचर से संबंधित है, सृष्टि से संबंधित है। तो जब प्रभुपाद के पास गया और प्रभुपाद को कहा कि मेरा ये नाम ठीक नहीं है, मेरा नाम बदल दीजिए, प्रभुपाद ने कहा नाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जो आखिरी में लगा होता है ना, दास या दासी, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको रियलाइज करना है आपको। दीक्षा के बाद क्या करना है, उसी को अनुभव करना है, उसको अपने जीवन में रियलाइज करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का सार यही है कि हम भक्तों के अनुगत होकर, आध्यात्मिक गुरु आदि के अनुगत होकर कृष्ण की शरण ग्रहण करें। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आने वाली बाधाएं कुछ भी नहीं है, केशाम संस्मरणात् पुंसाम, कहते हैं कि केवल वैष्णव गुरु या कृष्ण का स्मरण करने मात्र से आध्यात्मिक जीवन में आने वाली सारी बाधाएं एक किक में दूर हो जाती हैं। लेकिन हम इतने बद्ध हैं कि हम ऐसे महान आचार्यों का, वैष्णवों का, गुरु आदि का स्मरण नहीं करते हैं। इसलिए हमें शास्त्र प्रेरित करते हैं, ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो एक भक्त को नियमित रूप से अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका स्मरण आदि करना चाहिए, वैष्णवों का स्मरण करना चाहिए। इसलिए जब इस प्रकार से हम उनका शेल्टर ग्रहण करते हैं तो हम वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त करते हैं। इसलिए तो परीक्षित महाराज अत्यधिक आनंदित हुए कि उनके जीवन में किसका आगमन हुआ, शुकदेव गोस्वामी का। उन्होंने कहा आर किचु, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, शुकदेव गोस्वामी जैसे महान डिवोटी का शेल्टर मिला है। तो उनके द्वारा वो कहते कि आपका स्मरण करने से आप जैसे भक्तों का या वैष्णवों का इतना अधिक लाभ है, तो फिर क्या कहा जाए जब पाद शौचासनादि भी आपके चरणों की सेवा करने से, आपको आसन प्रदान करने से कितना लाभ हो सकता है, जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस मृत्यु जगत में जो जीव है उनको सबसे बड़ा बुन कुछ है, वर कुछ है। जैसे जब प्रचेताओं ने शिवजी के आदेशानुसार भगवत भक्ति की तो भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप कुछ वर मांगो, तो ये भगवान कहते मैं सारे वरों को देने वाला हूं। तो प्रचेताज कहते हैं कि इस जगत में और क्या मांगा जा सकता है। वो कहते हैं कि जो मरणशील व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसको इस जगत में सबसे बड़ा आशीर्वाद या सबसे बड़ा वर कुछ है तो आपके भक्तों का संग। इससे बढ़कर स्वर्ग आदि से भी बढ़कर यह है, क्या है, किसी व्यक्ति को आपके भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा, चैतन्य महाप्रभु गए थे केवल रामानंद राय का संग प्राप्त करने, ये सीक्रेट था उनका। इतना लंबा साउथ इंडिया घूम घूम के आ गए, क्यों गए थे वो, रामानंद राय को मिलो। तीर्थ यात्रा का फल यही है कि भक्तों, उन्नत भक्तों का संग हमें प्राप्त हो। तो जब वो रामानंद राय से मिले विद्यानगर में उसके तट पर, तो रामानंद राय से पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है इस जगत में एक व्यक्ति के जीवन में। तो रामानंद राय ने क्या कहा, कोई व्यक्ति भगवत भक्तों के संग से दूर हो जाए, इससे बढ़कर दुख इस संसार में नहीं है। तो मतलब हमें हमेशा तड़पना चाहिए, भगवत भक्तों का एसोसिएशन कम हो जाए, भगवत भक्तों का एसोसिएशन हमारे जीवन में ऑक्सीजन के समान है ना, सांस लेते हम तो ऑक्सीजन के समान है, नहीं तो फिर कई बार वेंटिलेटर पर रखा जाता है। मतलब वो है क्या है कि जब फेस्टिवल किए जाते हैं तो वो हमें थोड़ा बूस्ट देता है, या यात्राओं में ले जाते हैं, तो वो वास्तव में ऑक्सीजन के समान हमारे जीवन में काम करता है। तो भगवत भक्तों का संग हमें नहीं मिलता या उससे दूर हो जाते हैं तो हमें उस मछली के भांति क्या होना चाहिए, तड़पना चाहिए। तो ये तो बहुत उन्नत धरातल है, हम तो भक्तों के संग को टॉलरेट करते हैं। क्या करते, प्रभु जी बहुत सालों से आपको टॉलरेट कर रहा हूं। नहीं, भक्तों का एसोसिएशन हमें टॉलरेट करते हैं, भौतिक माया आदि का एसोसिएशन में हम जॉयफुल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, वही व्यक्ति मठ या मंदिर में रहने के योग्य है जिसके अंदर एक गुण है, और वो कौन सा है? सहनशीलता। हमारे ऊपर निर्भर है, या माया को टॉलरेट करें या फिर किसको टॉलरेट करें, डिवोटीज को टॉलरेट, इनको सहन करने में क्या है, हमारे सारे भौतिक भोग आदि की जो डिजायर्स हैं या फिर जो अनर्ताज हैं, वो भगवत भक्तों के संग में सारे कटने लगते हैं, काटने लगते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि हम अपने अपने स्थान में तो अपने आप को महाभागवत समझते हैं, नहीं मैं अपने घर में महान भक्त हूं, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं तो हमें महसूस होता है कि मेरी स्थिति क्या है, एक चींटी की भांति, छोटा सा मैं डिवोटी हूं, तब हमें अनुभव होता है। इसलिए भक्तों का संग की कामना सदैव एक भक्तों को करनी चाहिए, और क्योंकि भगवत भक्तों के द्वारा ही भगवत भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है, इसलिए भागवतम कहता है भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायते, कि भक्ति तो भगवान के भक्तों के संग से ही जन्म लेती है। इसलिए कृष्णदास कविराज भी कहते हैं भक्ति जन्म मूल हय साधु संग, भक्ति कहाँ से जन्म लेती है, बर्थ प्लेस क्या है भक्ति का, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसलिए साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो लव मात्र, कई बार भक्त कहते कि बस मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, लव मात्र साधु संग पावरफुल है, तो प्रेजेंट ही लगा के आ जाता हूँ जाके जस्ट मुंह दिखा के भाग जाता हूँ कि मैं आया था प्रोग्राम में, तो वो कहते बस लव मात्र बोला है शास्त्रों में अधिक नहीं तो इस प्रकार से हमारी टेंडेंसी है। तो इसलिए जितना भी हो सके हमें भक्तों के संग का लाभ उठाना चाहिए, और भक्तों के शेल्टर में ही कृष्ण को हम आकृष्ट कर सकते हैं, और यही आज इतना महान दिन है, इन आचार्यों का स्मरण करने का दिन है। कृष्णदास कविराज, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कृष्णदास कविराज, कहते कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माझ जे रचिला चैतन्य चरित, कहते हैं कृष्णदास कविराज रसिक डिवोटी हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की है, और गौर गोविंद लीला सुनिले, वो कहते हैं सुनिले गलाय शिला ताहे, वो कहते हैं कि गौर और गोविंद, कृष्णदास कविराज ने गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया और गोविंद मीन्स कृष्ण की लीलाओं को वर्णन किया, गोविंद लीलामृत ग्रंथ लिख के, कहते इन अमेजिंग ग्रंथों को उन्होंने दिया, और जिसको सुनने मात्र से ही इवन पत्थर भी पिघल गए, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ताहे ना डूबिला मोर चित्त, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरा चित्त उसमें डूबा नहीं है। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज की महानता का वर्णन किया है। इन आचार्यों ने महान महान बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, लेकिन सारा श्रेय किसी को दिया है, कृष्ण गुरु और वैष्णवों को। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं तो इतना अधिक अदम हूं, मेरा नाम लेने मात्र से किसी के सारे पुण्यों का क्षय हो सकता है, कैसे संभव है, उनके नाम क्या है, कृष्णदास, पूरी शेर कीट है मुझे से लगिस्ट, मैं मल में रहने वाले कीड़े से भी अधिक छोटा हूँ, जगाई मधाई से मैं अधिक पापी हूँ। तो इस प्रकार की भावना ये जो महान डिवोटीज अपने हृदय में धारण करते हैं, जब ऐसे महान आचार्यों का स्मरण करते हैं और उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो कृष्ण के हम प्रिय होने लगते हैं। कृष्ण देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऐसे महान गुरु वृंद या वैष्णवों को सर्व करते हैं, इसलिए तो प्रहलाद महाराज के लिए नरसिम्हदेव प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं कि प्रहलाद कुछ मांगो ना। प्रहलाद कहते हैं मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, कोई व्यापारी नहीं हूं कि आपके साथ किसी चीज का आदान प्रदान करूं। प्रहलाद कहते हैं कुछ देना ही चाहते हैं आप, तो क्या दीजिए, मेरे हृदय में ये जो भौतिक भोग करने की डिजायर है उसको मूलता से नष्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वो कहते हैं कि भगवान तो उनको कह रहे थे मेरे धाम चलो, वो कहते कैसे आओ आपकी सेवा में कैसे करूं, मुझे तो तव भृत्य सेवाम, मुझे तो सबसे पहले किसकी सेवा करनी चाहिए, आपके जो भक्त नारद हैं। कहते मैं तो एक सर्प जिनमें अत्यधिक ईर्ष्यालु जहरीले सर्प है, मतलब असत संग था, आसुरों के परिवार में मैंने जन्म लिया है, ऐसे सर्पों से भरे हुए कुएं में मैं गिरा था, लेकिन आपके जो महान डिवोटी है नारद मेरे जीवन में आए और उन्होंने क्या किया, मुझे ऐसे दयनीय कुएं से बाहर निकाला और मेरी रक्षा की। इसलिए मेरा फर्स्ट ड्यूटी क्या है, नारद को सर्व करना। इसलिए आध्यात्मिक गुरु को सर्व करना ये एक डिवोटी का सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसी कारण से तो कोई व्यक्ति कृष्ण का प्रिय बन सकता है। हाँ, कृष्ण या जैसे कोई व्यक्ति देख प्रभु कृष्ण देखते कि अरे प्रभुपाद इतने स्माइलिंग क्यों इतने हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो कृष्ण देखते अरे प्रभुपाद के चेहरे में स्माइल देने वाले डिवोटी कौन कौन है, तो कृष्ण की नजर कहाँ जाती है, उन डिवोटीज के ऊपर जिन्होंने प्रभुपाद को प्रसन्न किया है। हाँ, तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब जगन्नाथपुरी जाते थे तो वो सदैव गरुड़ स्तंभ के पास हाथ रखकर, जहां चैतन्य महाप्रभु खड़े हुआ करते थे, वहां खड़े होकर गरुड़ स्तंभ के नीचे ही, यहाँ गरुड़ जी है ना ऊंचे हैं, वहां उसके नीचे ही खड़े होकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती भगवान को देखा करते थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को। तो किसी डिवोटी ने पूछा, गुरुदेव आप इतना यहाँ गरुड़ जी के पास खड़े होकर क्यों दर्शन करते रहते, आगे जाइए ना, हम तो सबसे फ्रंट लाइन में रहना चाहते ने। यहाँ वो कहते हैं कि मेरी स्थिति, क्योंकि कृष्ण तो मेरे ओर दृष्टिपात नहीं कर सकते, मुझे देखने में कृष्ण की कोई रुचि नहीं है, लेकिन कृष्ण या जगन्नाथ जी सदैव अपने डिवोटी को देखते हैं। कौन है उनके डिवोटी, गरुड़ है, और गरुड़ डिवोटी मीन्स जो रेडी है, हाँ सेवा के लिए क्या है, रेडी है। गरुड़ और हनुमान कैसे खड़े रहते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं रहते, वो कैसे रहते गरुड़ जी, बिल्कुल ऐसे रेडी मुद्रा में, एक पाव भी आप देखेंगे गरुड़ जी ऐसे कोई जैसे प्रसादम के लिए बैठे ऐसे नहीं बैठते, उठना भारी हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु को, गुरु शिष्य को गुरु के पास हमेशा खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। जो भी गुरु को सर्विस नीडेड है उसको दौड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। तो वैसे ही जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि गरुड़ की सेवा को देखिए कि कैसे मुद्रा में है, कृष्ण के डिजायर्स को समझ जाते हैं, कृष्ण के छोटे से इशारों को समझते हैं और कृष्ण की सेवा के लिए दौड़ते हैं, तो वो सदैव तैयार है। तो कृष्ण इतने अधिक उनसे प्रीति रखते हैं, कहते कि जगन्नाथ जी मेरे ओर क्या दृष्टि डालेंगे, लेकिन वो किसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, गरुड़। इसलिए मैं तो उनके चरणों में क्या करता हूं, शेल्टर लेता हूं, थोड़ा उनके ऊपर दृष्टि डालते डालते मेरे ऊपर कृपा दृष्टि होगी। तो वही इसेंस है आध्यात्मिक जीवन का। हाँ, तो इस प्रकार से यही एकमात्र देखा जाए आध्यात्मिक जीवन का सार है। इसलिए तो कांचीपुरम में रामानुजाचार्य के कई सारे गुरु थे, महापूर्ण आदि, उसमें रामानुजाचार्य जब श्री पेरुम्बदूर में रहा करते थे तो उनके जो गुरु हैं, एक कांचीपूर्ण भी एक उनके अध्यात्मिक गुरु थे, तो कांचीपूर्ण कांचीपुरम में जाते थे वरदराज की सेवा करने के लिए। वरदराज इस मुद्रा में है, ये सुंदर विग्रह है, और वरदराज के हाथ में क्या लिखा है, मा शुच, गीता के जो दो अक्षर है भगवान के हाथ में, वहां कांचीपुरम दर्शन करते तो वहां लिखा मा शुच कि डरो मत। तो ये कांचीपूर्ण हमेशा वरदराज जो कृष्ण के विग्रह हैं उनकी सेवा करते थे। तो श्री संप्रदाय में इस चीज की बहुत प्राधान्यता है, भक्त सेवा, वैष्णव या गुरु आदि की जो सर्विस है। तो कांचीपुरम में जब श्री संप्रदाय में जब डेटीज की सेवा करते हैं, उसमें से एक सेवा है कि उसको कहते हैं, मैं भूल गया एग्जैक्टली, अंतरंग सेवा, जिसमें जो डिवोटी है वो सदैव ड्यूटीज के साथ रहता है कर्टन क्लोज होने के बाद भी, और डिटीज को अंदर जाके फैनिंग करता है, उनकी मसाज आदि करता है। जैसे रंगनाथ श्रीरंगम में जाते तो रंगनाथ की सेवा विभीषण आके करते हैं तीन समय में, तो वहां विभीषण का सुंदर सा वो भी रखा है, फोटोग्राफ है बड़ा सा। तो यहाँ वरदराज की सेवा करने के लिए कांचीपुरम में कांचीपूर्ण वहां करते थे। तो जब कांचीपूर्ण भगवान वरदराज की सेवा करते थे तो वरदराज बहुत अधिक उनसे प्रसन्न थे। तो एक बार कांचीपूर्ण जा रहे थे और बहुत दूर से आते थे, चेन्नई के वहां से वो आते थे चल चल के रोज भगवान की सेवा के लिए। रास्ते में एक उनको एक शूद्र व्यक्ति मिलता है जो बहुत ही लो ये होगा। उसने कहा कि कांचीपूर्ण और वो जो व्यक्ति था उसकी जो प्रेममय भावना किसके प्रति थी, कांचीपूर्ण के प्रति थी। तो उन्होंने उसने पूछा कि आप रोज वरदराज की सेवा करने के लिए जाते हो तो आप भगवान से आज पूछो कि मैं क्या उनके धाम में जाने वाला हूं कि नहीं। तो कांचीपूर्ण को लगा कि आज वरदराज की नून में जो मैं सेवा करता हूं उस समय पूछता हूं। तो कांचीपूर्ण जब टेम्पल में गए भगवान वरदराज कृष्ण की सेवा कर रहे थे, फैनिंग कर रहे थे उनको, तो जब फैन कर रहे थे उन्होंने सोचा भी प्रश्न भी पूछता हूं। हाँ, परे प्रश्न है ना सेवया डायरेक्ट प्रश्न नहीं, क्या है तद विधि, ये विधि है, प्रोसेस है। हाँ, तद विधि प्रणिपाते ना परे प्रश्न है ना सेवया। तो उन्होंने सोचा फैन कर रहा हो तभी क्वेश्चन भी पूछता हूँ। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं आज एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, वो कह रहा था कि भगवान से आज पूछो जाकर कि उनके धाम में जाने वाला हो कि नहीं। तो जब उन्होंने पूछा भगवान से, उन्होंने कहा वो निश्चित रूप से जाएगा। तो इन्होंने सोचा क्यों बताइए, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है, आप डिवोटी हो, महान भक्त हो, शुद्ध भक्त हो, आपकी सेवा के लिए वो तत्पर है। तो ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कांचीपूर्ण। इसी कारण से कपिल देव अपनी माता देहोवती को भी कहते हैं महत सेवाम द्वारम आहुर मिमुक्ते, कि महत महान जो आचार्य गण है वैष्णवाज है उनको सर्व करने से ये भौतिक जगत के सारे बंधन टूटते हैं और आध्यात्मिक जगत का द्वार उस व्यक्ति के लिए खुल जाता है। महत सेवाम द्वारम आहुर मिमुक्ते। तो उस समय जब कांचीपूर्ण बाहर आए फिर उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे, और फिर कुछ दिनों के बाद सेवा फिर गए, सेवा डेली जाते थे, लेकिन सोचा अरे मैंने उनके बारे में पूछा है थोड़ा अपने बारे में भी पूछ लेता हूँ हमें भी लगता है ना। तो वे जब एक दिन फैन कर रहे थे वरदराज को, तो वरदराज भगवान को उन्होंने पूछा ओ लॉर्ड आपने उनके बारे में बोला, मेरे बारे में बताइए क्या मैं आपके धाम जाने वाला हूँ, इतना फैन करता रहता हूँ आपको। भगवान ने कहा तुम नहीं जाने वाले। फैन उनके हाथ से क्या हुआ, गिर गया, और वरदराज के वहां से कांचीपूर्ण निकल पड़ते हैं, और वहां से कहां जाते हैं, श्रीरंगम जाते हैं जहां यमुनाचार्य के महान डिसाइपल महापूर्ण निवास कर रहे थे। हाँ, अपनी पत्नी के साथ, उनके पास गौशाला थी, बहुत सारे काम थे उनके घर में। तो ये कांचीपूर्ण अमेजिंग डिवोटी है। वो कभी कभी भगवान से वरदराज से दूर वहां भी चले जाते श्रीरंगम में, यहाँ का फैनिंग छोड़कर वहां करते हैं, रंगनाथ को फैन करने लगते। तो रंगनाथ कहते मैं तो नदी के तट पर हूँ, कावेरी है यहाँ और बहुत हवा आती है, मुझे हवा की आवश्यकता नहीं है, तुम कहाँ चले जाओ, वरदराज के पास जाओ। वरदराज उनसे बहुत प्रेम करते, तो उन्होंने लगा कई बार गुस्सा आता है ना, हम नहीं जाते किसी पर्सन के, इधर उधर घूमते हैं। तो वहां से वो तिरुपति गए बालाजी के पास, वहां जाकर क्या उठाया फिर से फैनिंग। बालाजी ने कहा देखो मैं इतने बड़े हिल के हिल स्टेशन पर रह रहा हूँ जहाँ हवा बहती रहती है, तुम कहाँ चले जाओ, वरदराज के पास। फाइनली वरदराज के शरण में आते। तो ये जब इस घटना से कहा कि तुम नहीं जा सकते, फैन गिर गया, तो श्रीरंगम में जाते हैं, वह महापूर्ण के घर में सेवा करने लगते हैं। महापूर्ण के घर में अपना जो वैष्णव ड्रेस सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ आने से सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं, सारी चीजें छुपानी पड़ती है। हाँ, तो वैसे ही उन्होंने जब वहां गए तो उन्होंने अपना सारा वैष्णव वेश छोड़ दिया, सिंपल से ड्रेसेस धारण किए और महापूर्ण के घर में सारी सेवाएं करने लगे, बर्तन घिसना, कुकिंग करना, झाड़ू पोछा लगाना और आंगन साफ करना, उनके जो गायें हैं उनको चराने ले जाना, उनका गोबर उठाना, कंडे बनाना, सारे सेवाएं करने लगे। किसके घर में जाकर? महापूर्ण के घर। और ऐसे कई महीने बीते हैं, महापूर्ण पहचान नहीं पाए कांशीपूर्ण को। लेकिन एक दिन जब ये गाय चराने गए थे, बहुत तेज बारिश आई और इनके पास एक ही ड्रेस था, तो वो जो ड्रेस था भीग गए। संध्या का समय हुआ था, तो जो भी उनका रहने का निवास स्थान छोटा सा था, तो उसके अंदर बैठे उन्होंने सोचा भी कपड़े भीग गए क्या करो, तो उन्होंने वैष्णव ड्रेस निकाला, अपना वैष्णव ड्रेस पहना ठीक से। तब महापूर्ण को लगा बेचारा इतनी सेवा करता है, जाके देख भी लेता हूं। तो देखा तो वैष्णव वेश में ये महान आचार्य है कांचीपूर्ण। तो महापूर्ण अभी चकित हो जाते हैं और उनके चरणों में एक प्रकार से गिरते, कहते आप इतने महान वैष्णव हो, वरदराज के इतने प्रिय डिवोटी हो, आपको उचित नहीं है कि आप मेरे पास क्या करें, सेवा करें, आप वरदराज की सेवा में जाओ। तो वहां से वो जाते हैं और जाकर, क्योंकि डिवोटी का मतलब क्या है, भक्त की पहचान सेवा से की जाती है ना। और भक्त के लिए जब उसके पास सेवा नहीं होती तो उसको मृत्यु के समान है। जैसे आप कहां भी जाए आपको सबसे पहले पूछते प्रभु जी क्या सेवा करते हैं आप, है कि नहीं। तो डिवोटी मीन्स जिसके पास कृष्ण के लिए करने के लिए कुछ है, कृष्ण को ऑफर करने के लिए कुछ है। तो भक्त का मतलब है जो सेवा से लोडेड होता है, सेवा से भागता नहीं है, सेवा वो अधिक चाहता है। तो जब ये कांचीपूर्ण फिर से वरदराज के पास जाते हैं और वरदराज के पास जाकर उनकी सेम क्या सेवा स्वीकार करते, फिर से फैनिंग। तो जैसे फैन उठाया वरदराज हंसते हुए कहते अभी तुम जाओगे अभी आप जा सकते हो मेरे धाम। तो इस प्रकार से ऐसे हजारों उदाहरण हम देखते हैं कि जहां भगवान अपने भक्तों को ये शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, आपनी आचरी भक्ति सिखाए सवारे। अपने आचरण से ही चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की शिक्षा सारे जगत को प्रदान की। और चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज पर भी अत्यधिक जोर दिया। इसलिए जो महान आचार्य हैं उनके बारे में हमें श्रवण करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, चर्चा करती रहनी चाहिए। इसलिए कहते वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र, वैष्णवों के चरित्र को नियमित पढ़ना चाहिए। जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत वीक हो जाते हैं तो कभी कभी मोस्टली डिवोटीज का ये अनुभव है, जैसे वो भक्ति में थोड़े ढीले हो जाते हैं तो कहते लीलामृत उठाते हैं हम प्रभुपाद का। लीलामृत जैसे पढ़ना शुरू करते फिर से वो जोश, वो बल, वो एंथुसियाज्म, वो इंस्पिरेशन, सारी चीजें उनमें आती हैं और फिर से रफ्तार से वो भक्ति में लगते हैं। इसलिए भक्तों के बारे जब हम सुनते हैं तो उससे कई सारे इफेक्ट्स हमारे आध्यात्मिक जीवन में होते हैं। पहला क्या है कि उन वैष्णवों की जो स्पेशलिटी है, जो क्वालिटी है, जब उनके बारे में हम सुनते हैं, मनन करते, चर्चा करते हैं, वो क्वालिटी हमारे हृदय में आकर स्थापित हो जाती है, वो गुण हमें विकसित होने लगते हैं। और दूसरा क्या है, एक दूसरा गुण प्रमुख रूप से विकसित होता है, डेवलप होता है, वो है डिटर्मिनेशन। भक्ति में क्या? डिटर्मिनेशन, वैष्णवों के बारे में सुनने से, चर्चा आदि करने से। इसलिए तो इतने सारे आचार्यों का हमारे वैष्णव कैलेंडर में अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है। कम से कम उन दिनों में उनके बारे में हमें सुनना चाहिए। इसी कारण से ये जो आचार्य हैं कृष्णदास कविराज, जिन्होंने इतना अद्भुत कार्य किया चैतन्य महाप्रभु के लिए या वैष्णव समाज के लिए, कृष्णदास कविराज का कंट्रीब्यूशन क्या रहा सबसे बड़ा? चैतन्य चरितामृत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब बंगाल में एक जगह प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन के बीच में ही बहुत तेज बारिश आई, इतना बाढ़ आ गया पूरे उस टाउन आदि में कि सारा भर गया और वो एक जगह खड़े हो गए और डिसाइपल्स को कहा प्रलय हो जाए और आपके हाथ में दो ग्रंथ हैं, एक हाथ में भागवतम, एक हाथ में चैतन्य चरितामृत, तो हो सके तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो भागवतम को छोड़ दो हाथ से, लेकिन किसको पकड़ के रखो, चैतन्य चरितामृत को। हाँ, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ये गौड़ीय सिद्धांत, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो सारे बंदिस्त हैं, उसमें अवेलेबल हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के लिए चैतन्य चरितामृत महान उपलब्धि है। इसलिए प्रभुपाद ने भागवतम का ट्रांसलेशन करते करते उसको रोका और क्या दिया बीच में, होल ट्रांसलेशन चैतन्य चरितामृत दिया। प्रभुपाद के डिसाइपल्स जब एक टेम्पल में स्वीट शॉप ओपन कर रहे थे, गोविंदास जो भी हैं, तो वहां उन्होंने कहा प्रभुपाद हमें नो फंड रेज करने के लिए कुछ स्वीट शॉप ओपन कर दे, बंगाली स्वीट्स रखेंगे उसमें। क्या रखेंगे? बंगाली स्वीट्स, जो वर्ल्ड में बड़े फेमस है। तो प्रभुपाद ने कहा बंगाली एक ही स्वीट वो महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? चैतन्य चरितामृत। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज जो अमेजिंग वैष्णव है, जिन्होंने ये चैतन्य चरितामृत देकर सारे वैष्णव समाज को धन्य किया। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि एक दिन आएगा कि इस चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए वेस्टर्नर्स भी बंगाली सीखेंगे। क्योंकि चैतन्य चरितामृत जब बंगाली आपको आता है और फिर आप चैतन्य चरितामृत को ट्राई करते हो पढ़ने का, तो वास्तव में आप रसगुल्ले खा रहे हो, क्या कर रहे हो या गुलाब जामुन का आस्वादन कर रहे हो। इसी कारण से ये जो शुरुआत में वृंदावन में गोविंद देव टेम्पल में जो महान डिवोटी थे हरिदास पंडित, गदाधर पंडित आदि की परंपरा में, तो वो रोज संध्या के समय में वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत को सुना करते थे। तो चैतन्य भागवत में प्रमुख रूप से चैतन्य महाप्रभु के जो नवद्वीप लीला है अधिकतर है, बाल लीला आदि उनका अत्यधिक वर्णन है। बाकी बाद की जो लीलाएं विशेष रूप से जगन्नाथपुरी आदि की लीलाएं बहुत कम मात्रा में है। तो इन डिवोटीज ने जब वो ग्रंथ पढ़ लिया तो उनके हृदय में डिजायर उत्पन्न हुई वृंदावन के भक्तों में कि चैतन्य महाप्रभु की हमें जगन्नाथपुरी की लीलाएं श्रवण करनी है। तो उन्होंने सोचा किसको कहे, कहां से हम प्राप्त करें। तो उनको याद आया, किसकी याद आई? कृष्णदास कविराज की। क्योंकि कृष्णदास कविराज ऐसे थे, आज रघुनाथ दास गोस्वामी का भी क्या है, आविर्भाव तिरुभाव, तिरुभाव। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज तिरुभाव है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु भी अप्रकट हो गए हैं, स्वरूप दामोदर भी अप्रकट हो गए, रामानंद राय भी अप्रकट हो गए हैं, जगन्नाथपुरी में महान महान भक्त अप्रकट हो गए हैं, तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो, ये विरह गीत नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा, जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। मतलब जब श्रीनिवास आचार्य अप्रकट हो गए थे तो नरोत्तम दास ठाकुर दौड़ पड़े फॉरेस्ट में और उनके जिह्वा से ये उद्गार, ये सॉन्ग्स निकले, आगे चलकर प्रार्थना के बुक फॉर्म में उसको कंपाइल किया। तो इतना विरह नरोत्तम दास ठाकुर को था क्योंकि उनके बहुत अधिक आसक्ति इन भक्तों से थे, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु और इन डिवोटीज से। तो वो कहते कि जय आने लो प्रेम धन, उन्होंने इतना प्रेम धन लेके आए हैं, ऐसे आचार्य गण कहां चले गए। कहते मैं आग में प्रवेश करता हूं, अपना माथा फोड़ना चाहता हूं पत्थर से। हाँ, कितना बड़ा ये है उनका अनुराग है वैष्णव एसोसिएशन या भक्तों के प्रति, भक्तों में आसक्ति। तो जब कृष्णदास कविराज ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि जगन्नाथपुरी में सारे डिवोटीज प्रकट हुए हैं, तो वो वृंदावन निकले। किस लिए निकले वृंदावन? क्योंकि उन्होंने सोचा क्या लाभ ऐसे जीवन को रखने का जिसमें भक्तों का संग नहीं इन महान वैष्णवों का। तो वृंदावन आए कि गोवर्धन के ऊपर जाओ और जंप लगाकर अपने प्राणों को त्याग दो। तो वो जब आए तो यहाँ वृंदावन में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाया और उनको कहा आप हमारे भाई के समान ही हो, आप सबसे अच्छा होगा कि आप चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के स्टोर हाउस हो, भंडार हो, क्योंकि आपने चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी की लीलाओं को देखा है। स्वरूप दामोदर के शेल्टर में रहकर आपने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का समझा है, तो आप राधा कुंड में निवास कीजिए, वह हरि नाम आदि का उच्चारण कीजिए और वहां रहकर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रोज एक या तीन घंटे राधा कुंड के तट पर चैतन्य लीला या गौर कथा का वर्णन करते थे, महाप्रभु की लीलाओं का। और उसको सुनने के लिए सबसे आगे नोटबुक पेन लेकर कौन बैठते थे? कृष्णदास कविराज। तो कृष्णदास कविराज कहते, जो मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख कमल से सुना है और उसी को ही मैं इस ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर रहा हूं। तो ऐसे कृष्णदास कविराज ने उनसे सुना था गौर लीलाओं को, तो डिवोटी जानते थे इसलिए उन्होंने उनको अप्रोच किया। तो ऐसे महान सेवा को करने के लिए कृष्णदास कविराज ने सोचा नहीं कि अरे देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेवा को शुरू करने के लिए सारे वृंदावन के वैष्णवों का कृपा की याचना की और फिर जाकर मदन मोहन के चरणों में गिरते हैं और मदन मोहन ये आशीर्वाद के रूप में अपना गार्लैंड मदन मोहन रिटीज के गले से गिरता है, उसको स्वीकार करते हैं और सेवा को कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज ये महान ग्रंथ प्रदान करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी महान आचार्य हैं जिनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दूसरे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र हैं जो वाराणसी या बनारस में रहा करते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु मिले, प्रकाशानंद सरस्वती आदि का उद्धार किया, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, उनको दो आदेश दिए प्रमुख रूप से। एक तो कहा, जब तक आपके माता पिता जीवित है उनकी सेवा करो क्योंकि वो महान वैष्णव है, और दूसरा कभी विवाह मत करना। तो इन दो आदेशों का पालन रघुनाथ भट्ट ने किया। और रघुनाथ भट्ट श्रीमद भागवतम के महान आचार्य थे। तो श्रीमद भागवतम को रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अध्ययन आदि करते थे और चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए वाराणसी को छोड़कर कभी कभी 6-6 महीने आकर जगन्नाथपुरी में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु की सेवा किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग करना, इस प्रकार से कई सारी सेवाएं वो करते थे। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, उनको कहते हैं कि आप वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर श्रीमद भागवतम का गुणगान करो। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का प्रमुख कार्य था ये करना, श्रीमद भागवतम का वर्णन करना। तो राधा दामोदर मंदिर में सारे ये सिक्स गोस्वामी इकट्ठा होते थे और भी डिवोटीज, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद भागवतम का वर्णन करते थे, बाकी सारे गोस्वामी उनसे श्रवण करते थे। तो ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक महान एक शिष्य थे राजा मान सिंह, जो जयपुर के किंग है। जब रूप गोस्वामी को वृंदावन में गोविंद देव के विग्रह मिले गोमती टीला में, तो रूप गोस्वामी ने उनका मंदिर बनाने के बारे में सोचा। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अपने डिसाइपल मान सिंह को कहा, ये टेंपल कंस्ट्रक्शन की सेवा कौन देखेगा, तुम संभालो, तुम करो। तो मान सिंह ने अपना सारा धन लगाया और क्योंकि वो राजा अकबर के यहाँ सेवक थे, नव रत्नों में से एक उनके रत्न थे, अकबर को उन्होंने प्रीच किया और अकबर से सारा जो रेड पत्थर है वो स्पॉन्सर किया और उसे क्या बनाया वृंदावन में, राधा गोविंद देव का विशाल टेम्पल, जिसमें सारे गौड़िया वैष्णवों का वो प्रमुख स्थान बन गया गोविंद देव टेम्पल। चाहे कोई बंगाल उड़ीसा से आता था, ब्रज के जो वैष्णवाज है वो सारे गोविंद देव टेम्पल में रोज संध्या के समय में या दिन में मिला करते थे और भगवान की जो स्तुति है, भगवान का जो गुणगान है वो किया करते थे। तो इस प्रकार से ये जो महान आचार्य हैं जिनके गुणों के बारे में हमें सुनना चाहिए, जिनके गुणों की चर्चा करनी चाहिए, यही हमारे वास्तव में हमारे इसका लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अक्षणो फलम तो अदृश्य दर्शनम ही तनो फलम तो अदृश्य गात्र संग्रह। वो कहते हैं हरिभक्ति सुदय में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आंखों का फल क्या है, वैष्णवों का दर्शन करना, और तनो फलम तो अदृश्य गात्र संग्रह, शरीर का फल क्या है, भक्तों का एसोसिएशन करना, और जिह्वा फलम तो अदृश्य कीर्तनम ही, इस जिह्वा का असली फल कुछ है तो वैष्णवों के गुणों का गान करना, भक्तों की प्रशंसा स्तुति आदि करना, उनकी क्वालिटीज का उच्चारण करना, सुदुर्लभा भागवता ही लोके, इस संसार में सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है, चीज है, तो भगवान के भक्त हैं। इसलिए हमें डिवोटीज को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उसी में ये हमारा आध्यात्मिक जीवन छुपा है। तो डिवोटीज मीन्स कृष्ण के हृदय है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद के हृदय में कौन रहते हैं? भक्तो रहते, वैष्णव। तो इस प्रकार से मतलब डिवोटीज को हम ये करते हैं, कष्ट देते हैं, तो भगवान के हृदय को हम क्या कर रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं। इसलिए गौड़िया सिद्धांत यही है, तीन चीजों में गौड़िया सिद्धांत भरा हुआ है, तीन अक्षरों में, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, कि नाम के प्रति रुचि। कोई कहता है कि क्या कृष्ण भावना में कुछ एक्शन प्लान बताओ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ तीन एक्शन प्लान है। फर्स्ट एक्शन प्लान क्या है? नामे रुचि, हरे नाम को गंभीरता से लो, और नाम में रुचि या नाम को गंभीरता से लेने से क्या करो? जीवे दया, जितना अधिक हो सके दूसरों को ये हरे नाम देने का प्रयास करो, कृष्ण भावना देने का प्रयास करो। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन में शॉर्टकट या कृष्ण को अपना बनाने का एक ही उपाय है कि ये कृष्ण भावना को क्या करो? वितरण करो, यही उत्कृष्ट चीज है। इसलिए तो सारे आचार्यगण हमें प्रेरित करते हैं, चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु हया तार यही देश। जिसको भी आप मिलते हो देखते हो उसको कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण का उपदेश क्या है? भगवद गीता का जो अंडरस्टैंडिंग है, भागवतम की जो शिक्षा है, और इस प्रकार से आप गुरु की भूमिका निभा सकते हो और सारे जीवों को ये कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हो। तो कृष्ण अत्यधिक प्रिय होते हैं या कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं उन भक्तों से जो प्रयास करते हैं कृष्ण भावना देने का। कोई कह सकता है कि मुझे पास योग्यता नहीं है, लेकिन हम डिजायर रखेंगे तो कृष्ण हमारे पास लोगों को भेजेंगे। जैसे लॉस एंजलिस में जब एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था प्रभुपाद के समय में, तो सारे भक्त, पूरा टेम्पल खाली हो जाता था, सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे, और एक माताजी थी जिसकी सेवा मंदिर के विग्रहों की पूजा करने की होती थी। उन्होंने कहा प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने कहा आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या करो? डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, तो मेरे ग्रंथों का वितरण करो। आप यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो उस टेम्पल के सारे डिवोटी चले जाते थे या अकेली माताजी रहा करते थे, और वो बेचारी रोया करते थे कि देखो सारे प्रभुपाद को प्रसन्न कर रहे और मैं अकेली प्रभुपाद को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ मैं बुक वितरण, क्योंकि मेरे पास तो विग्रहों की सेवा भी करनी है, किचन में कुकिंग भी करना है डीटी किचन में। तो जब ऐसे चिंतित थे तो अचानक फोन की रिंग उन्हें सुनाई दी, और फोन की रिंग सुनाई दी तो उठते डिवोटी क्या बोलता है? हरे कृष्णा, है कि नहीं? जैसे इसने बोला वहां से कहता है रॉन्ग नंबर है ये, हरे कृष्णा सुनते ही लोग क्या कहते हैं? कहाँ लग गया ये नंबर, रॉन्ग नंबर। तो ले माता जी कहते रॉन्ग नंबर नहीं है, कृष्णा का नंबर कभी रॉन्ग नहीं होता, ये सही नंबर का फोन आया है। तो फिर जब ये उन्होंने कहा तो इसने प्रीच करना शुरू कर दिया, बुक्स के बारे में बोलना शुरू कर दिया। तो वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ, वो आ गया वहां, पूरा सेट बुक्स उसने दे दिया और ले गए। तो ऐसे ही जब हम स्ट्रांग डिजायर रखते हैं कृष्ण को सर्व करने की इस माध्यम से, तो कृष्ण अरेंज करते हैं, है ना? क्योंकि कृष्ण को इस भौतिक जगत के जीवों की अत्यधिक चिंता है अपने धाम में ले जाने के लिए। हम जितना चिंतित नहीं भगवान के पास जाने के लिए, उससे अधिक चिंता कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं हमारी। तो इसलिए नामे रुचि जीवे दया, और तीसरी चीज क्या है? वैष्णव सेवा, गुरु आचार्य भक्तों को सर्व करने का प्रयास करें, जिसके द्वारा हम कृष्ण के प्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे महान आचार्यों का जब भी आविर्भाव तिरोभाव आदि आता है तो हमें प्रयास करना चाहिए उनके बारे में पढ़ने के लिए, उनके बारे में श्रवण करने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए, जिससे उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं और आध्यात्मिक जीवन जो हमारा बहुत ढीला ढीला है तो उसमें एक प्रकार से रफ्तार आती है। तेजी आती है। इस प्रकार से हमें इन महान आचार्यों के जीवन और शिक्षाओं को स्मरण और समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।